नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज राष्ट्रपति भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीक नहीं बल्कि भारत में सकारात्मक बदलाव का अवसर है।
सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को एआई ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दशक में देश के जीडीपी, रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एआई का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का एआई टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल की प्रभावी भूमिका होगी।
आयोजन के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों और सांसदों सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण लेने वालों को प्रमाण पत्र दिए। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र को कुशल बनाएं चुनौती नाम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। इस चुनौती का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियारों की निर्णायक भूमिका राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में संगठन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय का दौरा कर सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस करके भारत की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ की सराहना की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आज कहा कि अगले महीने की पहली तारीख से सभी नए फास्टैग जारी करने के लिए कारों के नो योर व्हीकल केवाईवी कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये कदम राजमार्गों से आने वाले लोगों को की सुविधा और फास्टैग एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि केवल शिकायत वाले विशेष मामलों में ही केवाईवी कार्ड आवश्यक होगा। अगर कोई शिकायत नहीं मिलती है तो मौजूदा कार फास्टैग के लिए केवाईवी कार्ड की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें 10 लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर 85% कर लगाने की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि आयकर केवल आय पर लगाया जाता है न कि लेनदेन पर। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि आयकर कानून में 10 लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर किसी तरह का कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। पीआईबी ने नागरिकों से ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। बुल्गारिया ने नववर्ष के पहले दिन यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है और यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बुल्गारिया की मुद्रा लेव जनवरी माह तक यूरो के साथ प्रचलन में रहेगी और 1 फरवरी से यूरो देश की एकमात्र कानूनी मुद्रा बन जाएगी। 1 जनवरी 1999 को आधिकारिक रूप से यूरो जारी होने के बाद से 11 देशों में यूरो जोन स्थापित हुआ था। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। इनमें से 6 सदस्य स्वीडन, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क ने अब तक यूरो नहीं अपनाया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 2 प्रारूप जारी किए। ये आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्र गीत के 25 प्रारूपों के प्रस्तावित सेट में से पहले 2 हैं। वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के अंतर्गत ये प्रारूप डिजिटली जारी किए गए थे। श्री द्विवेदी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का केवल गीत भर नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सशक्त और शाश्वत उद्घोष है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र गीत के ये विविध प्रारूप विभिन्न संगीत शैलियों में प्रस्तुत किए गए हैं। इनका देश के नागरिकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता सशक्त होगी। मौसम विभाग ने ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 5 जनवरी तक बहुत घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।